दृश्य अनुसार आलोचनात्मक सारांश। प्रस्तावना। यूजीन ओ नील का दी हेयरी एप एक 8 दृश्यों में समाप्त नाटक है। प्रथम 2 दृश्य प्रस्तावना के रूप में हैं, वह मुख्य पात्रों से पाठक का परिचय कराते हैं, साथ ही साथ उनकी परिस्थिति भी उजागर करते हैं। दृश्य 3 में टकराव दर्शाया गया है, जो कि एक ओर यांग एवं माइल्ड्रेड के मध्य है और दूसरी ओर श्रम एवं पूंजी के मध्य। दृश्य 4 में इस टकराव की यांग पर हुई प्रतिक्रिया को दर्शाता है। दृश्य 5 में यांग के विद्रोह का उसके व्यवहार में प्रदर्शन दिखाया गया है। दृश्य 6 कारागार में है। दृश्य 7 दिखाता है कि यांग को श्रमिक संगठन द्वारा भी अस्वीकार किया गया है। अंतिम दृश्य उसके जीवन का अंत दर्शाता है। दृश्य 1 प्रारंभिक दृश्य यांग के इस्पात एवं शक्ति के संसार से गहन संबंध पर प्रकाश डालता है। दृश्य का प्रारंभ एक ट्रांस एटलांटिक लाइनर के फायरमैन के भीतरी कक्षा में होता है। जहाज को न्यूयॉर्क से चले हुए 1 घंटा बीत चुका है। सभी तरफ लोहे की संकरी बेंचें पड़ी हुई है। कमरा लोगों से भरा हुआ है। वे चिल्ला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, हंस रहे हैं और गा रहे हैं। अस्पष्ट शोर इस प्रकार का आभास देता है मानो किसी पिंजड़े में बंद जानवर दहाड़ रहे हों। सभी लोग पिए हुए हैं। अनेक बोतलें एक से दूसरे को पीने के लिए दी जा रही हैं। सभी भद्दी पतलून और भारी भद्दे जूते पहने हुए हैं। उनमें से अधिकतर कमर तक नंगे हैं। यह प्रतीत होता है कि वे सफ़ेद इस्पात में कैद कर दिए गए हैं। छत इतनी नीची है कि सिर को छूती है। वे सीधे खड़े नहीं हो सकते। हर समय उन्हें झुके हुए कार्य करना पड़ता है। इस अवस्था में कोयला झोंकने का कार्य करने के कारण उनकी पीठ पर कुबड़ निकल आया है और कंधे की मांसपेशियां अधिक विकसित हो गई हैं। वे सभी प्रागैतिहासिक मनुष्यों जैसे लगते हैं। उन सभी के सीने पर घने बाल हैं। उनकी भुजाएं लंबी और बलिष्ठ हैं तथा आंखें छोटी किंतु क्रोधयुक्त हैं। बालों के रंग, त्वचा, आंखों आदि से वे सभी एक से लगते हैं। इस नाटक का नायक यांग एक फायरमैन है, जो एक समुद्री जहाज के स्टॉकहोल में कार्य करता है। वह एक बलिष्ठ व्यक्ति है जो पूरी निष्ठा के साथ कर्तव्य पालन करता है। इस प्रकार से यांग के व्यक्तित्व का व्यापक चित्रण किया गया है। वह अन्य स्टोकर्स की अपेक्षा अधिक विशाल दिखाई देता है। यद्यपि कि अन्य भी अत्यंत बलिष्ठ हैं, यांग अधिक झगड़ालु एवं आक्रामक है। अन्य की अपेक्षा वह अधिक बलवान एवं आत्मविश्वासी है। इन गुणों ने उसे अन्य स्टोकर्स से अधिक श्रेष्ठ बना दिया है। वे उससे डरते हैं और उसका सम्मान करते हैं। वह उनका प्रतिनिधि बन गया है एवं इस अधिकार में आनंद प्राप्त करता है। दृश्य का प्रारंभ आवाजों से होता है, जो संकेत करती है कि स्टोकर्स भारी मात्रा में शराब पीने में मस्त हैं। इसमें यह भाव निहित है कि ये लोग असामान्य परिस्थितियों में कार्य करते हैं, अतः नशे के आदि हो जाते हैं। आवाजें, जरा मुझे पीने को दो, यह लो तुम भी खूब पियो, हम तो आपको आदाब बजाते हैं, आप तो पीकर नवाब हो जाते हैं। अरे यह वाली कैसी है, तकदीर से बहुत अच्छी है, मुझे भी तो कुछ पीने को दो, अपने हलक तक उड़ेल लो आदि। यांग का ध्यान इस शोर शराबे पर जाता है। अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए वह उन्हें शांत रहने को कहता है। वह बियर पीने से मना कर देता है। वह टिप्पणी करता है कि यह तो लड़कियों के पीने की चीज है, मर्दों को तो तेज शराब चाहिए। अनेक बोतलें उसे दी जाती हैं। वह उन सभी की शराब चखता है और एक बोतल अपने पास रख लेता है। बोतल के मालिक से कहता है कि वो दूसरी बोतल ले ले। यांग पुनः उन लोगों की तरफ देखता है। उसका चेहरा देख सभी पुनः शांत हो जाते हैं। आवाजें पुनः सुनाई देती हैं। आवाजें, अब तो जहाज नीदरलैंड के आगे निकल गया होगा, बस अब वहीं पहुंचने वाला है। 6 दिन और इस नरक में काट लो, तब सदम पटन आएगा। क्या उपकाई आ रही है, सिर घूम रहा है, पियो और सब भूल जाओ। तुम्हारी बोतल में क्या है, जिन, यह हमारे पीने की चीज है आदि। पैडी की याद की जाती है। वह विस्की वाला गीत सुनाए। वह एक बुरा आयरिश शराबी है, जिसकी रुचि सोने में और पुराने सुहाने दिनों के स्वप्न देखने में है। उसका चेहरा एकदम बंदर जैसा है, उसकी आंखों में उदासी भरी है। वह आंखें मिचमिचाकर कहता है कि इतना नशा कभी नहीं होता कि गाना भी ना गा सको। वह बारीक आवाज में नाक के स्वर से उदासी में गाता है, इसे मैं न कहो, यह है जिंदगी इंसान की, अब तो यह मैं ही है मेरी जानी। इसे मैं न कहो, यह है जिंदगी इंसान की, अब तो यह मैं ही है मेरी जानी। बेसूध कर दे उस बूढ़े को जिसकी ढल गई जवानी, अब तो यह मैं ही है मेरी जानी। यह तो संयोग की बात है कि इस समय यांग किसी विषय पर चिंतन कर रहा है, अतः इस शोर शराबे से उसे व्यवधान महसूस होता है। वह उन्हें शोर शराबे से मना करता है, सभी उसका उपहास करते हैं क्योंकि यांग जैसे व्यक्ति से सोचने की अपेक्षा नहीं की जाती है। आवाजें, यांग इसमें अपना दिमाग खराब मत करो, सिर में दर्द हो जाएगा। सभी हंसते हैं, पियो पियो बस सोचो मत, पियो पियो बस सोचो मत, सब यह गाने लगते हैं तथा बेंचों पर मुक्के मार मार कर लय उत्पन्न करते हैं। अपनी थकान से मुक्ति पाने को ये स्टोकर्स बहुत ज़्यादा पीते हैं तथा शराब की प्रशंसा में गीत गाते हैं। उनमें से एक भावुक होकर अपनी प्रेमिका और घर के विषय में गीत गाने लगता है। यांग यह पसंद नहीं करता। यांग उस स्टोकर से गाना बंद करने को कहता है क्योंकि घर नरक से अधिक श्रेष्ठ नहीं होता, उनके लिए तो यह जहाज ही घर है। यह उनकी सभी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करता है। गर्व की भावना से ओतप्रोत होकर यांग उन्हें बताता है कि उसने तो बचपन में ही घर त्याग दिया था क्योंकि घर पर उसे केवल मार पड़ती थी। जब से उसने घर छोड़ा है किसी ने भी उसे पीटने का साहस नहीं किया है। वह उन सभी को लड़ने के लिए ललकारता है यदि उनमें किसी को भी उसे पीटने की इच्छा हो। वह जानता है कि यह साहस किसी में नहीं है। वह झूठी भावुकता पर कटाक्ष करता है कि कोई लड़की घर पर प्रतीक्षा कर रही होगी। वह दावा करता है कि यह मात्र भ्रम है क्योंकि लड़कियां कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, वे तो वैश्याओं के समान होती हैं जो एक छोटे सिक्के के लिए पुराने प्रेमी को धोखा दे सकती है। उसका दावा है कि वह स्त्रियों के साथ सदैव कठोर व्यवहार करता है, वे सभी अविश्वसनीय एवं धोखेबाज होती हैं। यांग की बात सही है, हम ही जहाज चलाते हैं, हम किसी और की बात नहीं सुनेंगे। इसे उठाकर बाहर फेंक दो, कायर कहीं का, इसे बाहर फेंक दो, मैं तो इसका जबड़ा तोड़ दूंगा, वे सभी धमकाते हुए लोग को घेर लेते हैं। यांग उन्हें सलाह देता है कि वे लोंग के साथ हिंसक व्यवहार ना करें तथा लोंग को अकेला छोड़ दें। यांग पुनः शराब पीने लगता है और सभी उसका साथ देते हैं। पैडिस विचार से सहमत नहीं है कि स्टोकर्स जहाज को गतिशील बनाते हैं, अतः यह उनका है। पैडी अपनी युवावस्था के विषय में बताता है कि जब नाविकों का श्रेष्ठ काल था उस काल के जहाज बहुत आकर्षक लगते थे। इनमें ऊंचे मस्तूल होते थे तथा रंग बिरंगे पाल लगे होते थे। बलिष्ठ नाविक इन्हें चलाते थे। इन नाविकों को समुद्र का बेटा कहा जाता था। समुद्र तो उनके लिए माता के समान था। वे अत्यंत सुंदर दिखते थे, त्वचा एकदम स्वच्छ, आंखें चमकीली, पीठ सीधी और छाती चौड़ी। वे रोमांच से भरपूर होकर प्रकृति का खुले में सामना करते थे। निसंदेह वे बहादुर और साहसी थे। अच्छे मौसम और ताजी वायु में वे नाविकों के गीत गाते थे। वे स्वतंत्र मनुष्यों के रूप में कार्य करते थे, तब वास्तव में वे जहाज के होते थे। पैडी दावा करता है कि नाविक जहाज के उस भूतकाल में थे, किंतु अब परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। उस समय नाविक जहाज के अविभाज्य अंग थे। वे जहाज एवं समुद्र के मध्य अटल कड़ी के समान थे क्योंकि जहाज उनके शारीरिक श्रम द्वारा चलाए जाते थे, किंतु अब तो जहाज को इंजन चलाते हैं। स्टोकर्स तो वायलर की भट्टी में कोयला झोंकते हैं जिससे भाप बनती है। चारों तरफ काला धुआं एवं कोयले की राख उड़ती है। स्टोकर्स एक अंधेरी कोठरी में बंद रहते हैं। यहाँ न धूप आती है न ताजी हवा। इन अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में उनके फेफड़े कोयले की राख से भरकर रुक जाते हैं तथा कोयला झोंकने को सब्बल बार बार उठाने की क्रिया से कमर टूट जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक चिड़ियाघर के स्टील के बड़े पिंजरे में बंद कर दिए गए हैं। वह यांग के इस तर्क का उपहास करता है कि वे जहाज के हैं। वह संकेत करता है कि जीवित मनुष्य कभी भी इंजन का हिस्सा नहीं हो सकते। यांग पैडी के विचार को यह कहकर निरस्त कर देता है कि एक बूढ़े व्यक्ति को वर्तमान की कोई जानकारी है। बढ़ती हुई उम्र के कारण पैडी की शक्ति एवं साहस का ह्रास हुआ है। एक प्रकार से वह तो एक मृतक के समान है, किंतु यांक नौजवान होने के कारण एक जीवित की तरह कार्य करता है। यांक स्टोकर्स के पक्ष में तर्क देता है और उनका महत्व बढ़ाने को कहता है कि वे जहाज का एक हिस्सा हैं। वे इसे चलाते हैं, वे इसे तेज रफ्तार से दौड़ाते हैं। उनके श्रम के कारण ही जहाज एक घंटे में 25 नाट की लंबी दूरी तय करते हैं। पुराने जहाज तो इस तीव्र गति की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पैडी एक बूढ़ा व्यक्ति है, वह इतना भारी कार्य नहीं कर पाता। वह भ्रमित हो जाता है। जो कुछ भी वह रोमांचकारी रात दिन, तारे चंद्रमा, सूर्य हवाएं, ताजी हवा, सुंदर मौसम के बारे में कहता है, वर्तमान काल में निरर्थक है, क्योंकि अब लोग गति की आकांक्षी हैं। नौजवान यांक इसका प्रतिनिधित्व करता है। बूढ़ा पैडी तो आराम और स्वप्न में आनंद लेता था, वह तो अब बीते समय का है, वह जहाज का हिस्सा नहीं है। लोंग यांक के इस विचार का समर्थन करता है कि स्टोकर्स के लिए यह जहाज घर की तरह है। लोंग याद दिलाता है कि यह जहाज स्टोकर्स के लिए नरक के समान है, जहाँ उन्हें विपरीत परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। यह भी सच है कि यहाँ सर्वाधिक कष्टों में कार्य करना होता है, किंतु इसके लिए किसको दोष दिया जाए। पवित्र बाइबल के अनुसार सभी स्वतंत्र एवं समान पैदा होते हैं, किंतु व्यवहारिक वास्तविकता यही है कि धनी लोग जहाज के आरामदायक कक्षों में यात्रा करते हैं, जबकि गरीब मजदूर स्टोकहोल में मेहनत करते हुए पसीना बहाते हैं। उन्हें ताजी हवा भी नहीं मिलती, उन्हें कोयले की राख में सांस लेनी होती है। श्रमिकों के सभी कष्टों के लिए पूंजीपति जिम्मेदार हैं, लेकिन लोग शोर मचाकर लोंग की बात समाप्त करा देते हैं। आवाजें, इसको छोड़ो, चुप हो जाओ, बहुत हो गया, बैठ भी जाओ, मूर्ख कहीं का, चुप हो जाओ आदि। यांक लोंग से चुप होने को कहता है। वह इस विचार से सहमत नहीं है कि मजदूर वर्ग के कष्टों के लिए पूंजीपति किसी प्रकार से जिम्मेदार है। वह लोंग पर आरोप लगाता है कि वह साल्वेशन आर्मी का प्रचार करने वाले एक समाजवादी नेता की तरह भाषण दे रहा है। वह लोंग को किसी पार्क में जाकर सार्वजनिक सभा को संबोधित करने की सलाह देता है, किंतु जहाज के स्टोकहोल में भाषण देना उचित नहीं है। उसके अनुसार लोंग एक कायर है जो अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है। यांक के विचार में जहाज के कक्षों में यात्रा करने वाली धनी यात्रियों का स्टोकर्स की दयनीय स्थिति से कोई सरोकार नहीं है। वह दावा करता है कि स्टोकर्स उन धनी यात्रियों से बेहतर है। एक अकेला स्टोकर उन सभी यात्रियों पर भारी पड़ेगा, किंतु उन यात्रियों में से एक भी यहाँ स्टोकहोल की गर्मी में एक मिनट भी नहीं बिता सकता। यदि वह यहाँ प्रवेश कर भी ले तो मूर्छित हो जाएगा तथा उसे स्ट्रेचर पर उठाकर ले जाना पड़ेगा। इससे सिद्ध होता है कि स्टोकर उन धनी यात्रियों से अधिक श्रेष्ठ है। ये धनी लोग जहाज पर लदे एक व्यर्थ के बोझ से अधिक कुछ भी नहीं है। यांक दावा करता है कि स्टोकर्स उन धनी यात्रियों से अधिक श्रेष्ठ है जो जहाज पर सुविधा संपन्न कक्षों में यात्रा करते हैं, किंतु उनकी उपयोगिता कोई नहीं है, अतः वे व्यर्थ के बोझ के समान हैं। श्रम के महत्व पर जोर डालते हुए वह पूछता है कि इस जहाज को चलाने वाली शक्ति कौन सी है। यह निश्चित ही स्टोकर्स द्वारा किया गया कठोर श्रम है। इससे सिद्ध होता है कि जहाज उनका है तथा वे जहाज के हैं, जबकि इन धनी यात्रियों का जहाज के लिए योगदान शून्य है। यांक स्पष्ट करता है कि यह जहाज उन लोगों को नरक प्रतीत होता है जो हतोत्साहित हो चुके हैं। यह जहाज बहादुर स्टोकर्स की शक्ति द्वारा चलाया जाता है। वे इस जहाज को गतिशील बनाते हैं। वे जहाज के हैं। यह जहाज लोंग जैसे कायरों का नहीं है, जिनमें कार्य करने की इच्छा का अभाव है। आवाजें, गर्व के भाव के साथ, सही है, यह मर्दानगी का काम है। लोंग कोरी बातें करना बेवकूफी है। इसकी बात तो कभी समाप्त नहीं होती, इसका सत्यानाश हो। यांक स्पष्ट करता है कि पैडी जहाज को नरक क्यों मानता है। वह एक बूढ़ा एवं कमजोर व्यक्ति है जो भारी काम नहीं कर सकता। वह कोयले की राख और स्टोकहोल की भयंकर गर्मी में सांस नहीं ले सकता। वह तो भूतकाल का एक हिस्सा बन गया है, किंतु यांक नौजवान है। उसे इंजन से, कोयले की राख से और धुएं से कोई कष्ट नहीं होता। उसे धुएं में सांस लेने में और कोयले की राख निकलने में कोई भी परेशानी नहीं होती। इससे तो उसे अधिक से अधिक कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। यह उसे एक पौष्टिक भोजन की तरह प्रतीत होता है। नौजवान होने के कारण वह स्टोक होल की गर्मी के लिए अभ्यस्त हो गया है। उसे तो यहाँ यह सोचकर आनंद मिलता है कि उसके श्रम से इतनी गर्मी उत्पन्न हो रही है। उसके श्रम के कारण जहाज दहाड़ते हुए इतना धुआं निकाल रहा है। वह तो इस जहाज का ही एक हिस्सा हो गया है। उसे यहाँ अत्यंत आराम मिलता है। उसे नहीं पता कि इस जहाज के बाहर भी कोई दुनिया है। वह तो अपने कर्तव्य के लिए समर्पित है। क्या हुआ? यह सुनकर पैडी जोर जोर से हंसता है। इससे यांक को क्रोध आ जाता है। यह पैडी को आनंद आता है। वह सौहार्दपूर्वक गीत गाने लगता है। अब तो दुनिया में किसी की मुझे परवाह नहीं, कौन अपना जब किसी दिल में मेरी चाह नहीं। यह गीत यांक को प्रसन्न कर देता है। वह पैडी की प्रशंसा करता है कि उसने सत्य जान लिया है कि अन्य किसी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह पैडी से कहता है कि अब वह नरक अर्थात स्टॉकहोल में काम करने आए, यहीं पर कोयले की राख भी खाने को मिलेगी। पैडी दावा करता है कि वह कुछ नहीं करेगा, वरन आराम करेगा, शराब पिएगा, सोचेगा और स्वप्न देखेगा। यांक पैडी को उसके आलस के लिए फटकारता है तथा घृणापूर्वक पैडी की ओर पीठ कर लेता है। दृश्य दो। पहले दृश्य के घटनाक्रम के दो दिन बाद इस दृश्य का घटनाक्रम प्रारंभ होता है। पहले दृश्य में स्टोकर्स की दिनचर्या को उजागर किया था, उसके ठीक विपरीत इस दृश्य में पूंजीपतियों का जीवन प्रकाश में होता है, क्योंकि जो पात्र प्रस्तुत किए गए हैं वे माइल्ड्रेड डगलस और उनकी आंट हैं। मिस्टर डगलस एक पूंजीपति हैं और जहाज के मालिक हैं। उनकी पुत्री माइल्ड्रेड 20 वर्ष की दुबली पतली कोमलांगी पीले किंतु आकर्षक चेहरे वाली युवती है। उसके चेहरे पर उच्चता का घृणापूर्व भाव आत्मचेतना से उत्पन्न हुआ है। वह क्रोधित, उत्तेजित एवं असंतुष्ट दिखाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह खून की कमी से ग्रसित है। उसकी आंट दिखावा करने वाली घमंडी मोटी बूढ़ी महिला है। अपना उच्च स्तर दिखाने को वह कीमती पोशाक पहनती है। माइल्ड्रेड की पोशाक एकदम सफ़ेद है। जहाज से निकल आकाश में उड़ता हुआ काला धुआं माइल्ड्रेड को आकर्षित करता है कि उसकी आंट सभी प्रकार के धुएं से घृणा करती है। माइल्ड्रेड अपनी आंट को याद दिलाती है कि उसकी परदादी चीलम पीती थी। आंट कहती है कि यह एक असभ्य कार्य है। माइल्ड्रेड टिप्पणी करती है कि सिगार पीने के विषय में अब लोगों का नजरिया सकारात्मक हो गया है। माइल्ड्रेड भावुक होकर कहती है कि उसे आंट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यह सुनकर वह करवाहट से मुस्कुराती है और माइल्ड्रेड की बेवकूफ़ी की ओर संकेत करती है। आंट की राय में समाज सेवा करना तथा गरीबों से मिलना मूर्खतापूर्ण कार्य है। माइल्ड्रेड की यह जानने में गहरी रुचि है कि विषम परिस्थितियों में गरीब लोग कैसे रहते हैं। वह समाज में अपनी उपयोगी भूमिका बनाना चाहती है। वह अपने प्रयास के प्रति गंभीर है, किंतु उसे भय है कि उसमें लगन और सामर्थ्य का अभाव है। वह संकेत करती है कि उसके पूंजीपति पिता को उससे कोई लगाव नहीं है। वह तो हर समय धन कमाने में व्यस्त रहता है। आंट उसे सलाह देती है कि वह बनावटी व्यवहार अपनाने का प्रयास करे, किंतु माइल्ड्रेड आंट को याद दिलाती है कि उसके दादा एक लौह कारखाने में असाधारण मजदूर थे। वह एक एडलर थे जिसका काम पिघले हुए लोहे को चलाना होता है। यह तथ्य उसे प्रेरणा देता है कि वह जाने कि स्टॉकहोल की गर्मी में गरीब मजदूर किस प्रकार कार्य करते हैं। आंट उसे पूछती है कि उसने इसके लिए जहाज के अधिकारियों से अनुमति प्राप्त की अथवा नहीं। माइल्ड्रेड बताती है कि उसने अनुमति प्राप्त कर ली है। यह संयोग की बात है कि माइल्ड्रेड समाजशास्त्र की छात्रा रही है, अतः उसकी रुचि मजदूरों की सामाजिक स्थिति जानने में है। उसे यह जानकर प्रसन्नता होती है कि उसे एक अवसर प्राप्त होगा कि स्टॉकहोल में कार्यरत मजदूरों को वह निकट से देख सके। इससे जहाज के सभी अधिकारी परेशान हो जाते हैं। वे सभी अच्छी तरह जानते हैं कि 20 वर्षीय माइल्ड्रेड डगलस स्टील के प्रेसिडेंट और जहाज के मालिक मिस्टर डगलस की पुत्री है। वह जानने की इच्छुक है कि विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य फंसे रहते हैं। वह स्टॉकहोल में जाकर जानना चाहती है कि स्टोकर्स वहाँ किस प्रकार कार्य करते हैं। दूसरा इंजीनियर उसे सलाह देता है कि अपने सुंदर सफ़ेद पोशाक को धब्बों से बचाने के लिए माइल्ड्रिड एक पुराने कोट से उसे ढक ले। माइल्ड्रिड कोट पहनने का विचार यह कहकर ठुकरा देती है कि उसे पोशाक की परवाह नहीं है। यदि गंदे स्थान पर जाने से धब्बे लगकर खराब हो भी गई तो वह इसे उठाकर समुद्र में फेंक देगी। उसके पास पोशाकों की कमी नहीं है। उसके पिता एक जाने माने पूंजीपति हैं। वह जो मन में आए खरीद सकती हैं। इसके अतिरिक्त उसके पास ऐसी अनेक पोशाकें हैं, इसलिए वह पोशाक के प्रति लापरवाह है। यह साधारण प्रतीत होने वाला संवाद प्रतीकात्मक अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण है। माइल्ड्रिड पूंजीवाद का प्रतीक है। उसके पिता धनी हो गए हैं क्योंकि यांग जैसे मजदूर उनके लिए दयनीय परिस्थितियों में पसीना बहाते हैं। यह उनका श्रम है जो मिस्टर डगलस को लाभ अर्जित करवाता है। उसकी पुत्री एक सुंदर सफ़ेद पोशाक पहनती है जबकि वह कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करती। इसके विपरीत यांग जैसे मजदूर कभी सुंदर सफ़ेद पोशाक पहनने का स्वप्न भी नहीं देख सकते क्योंकि वे तो अपनी खाल भी स्वच्छ नहीं रख पाते। उनके फेफड़े भी कोयले की राख से भर जाते हैं। यह अन्याय वर्ग संघर्ष को जन्म देता है जो मजदूरों को हिंसक और विनाशकारी बनाता है। माइल्ड्रिड दूसरे इंजीनियर के पीछे चलने का निर्णय लेती है। आंट उसे एक पाखंडी कहती है किंतु माइल्ड्रिड आंट को संभल कर चलने को कहती है। आंट कहती है कि ये गतिविधियां उसके पिता को बदनाम कर देंगी किंतु माइल्ड्रिड कोई चिंता नहीं करती। दृश्य तीन। यह दृश्य जहाज के स्टॉकहोल में प्रारंभ होता है। यहाँ पर अनेक वायलर और भट्टियां हैं किंतु ऊपर की ओर से केवल एक बल्ब लटका हुआ है जिससे धुंधला प्रकाश हो रहा है। वहां पर एक पंक्ति में स्टोकर्स बैठे हैं जो कमर तक नंगे हैं। वे भट्टियों के दरवाजों के सामने बैठे हैं। अपने सब्बलों के ऊपर झुके हुए वे इस प्रकार लग रहे हैं मानो सब्बल उनके शरीर के ही अंग हों। उनके कार्य में एक विचित्र लय है। भट्टी के दरवाजे खोलने को वे सब्बल का प्रयोग करते हैं। वे कोयला भी एक लय के साथ भट्टी में झोंकते हैं। वे भट्टियों के खुले मुंह में कोयले झोंक रहे हैं। भट्टियों में तेज आग जल रही है। दरवाजे खोलने या बंद करने से शोर होता है। जब पर्दा उठता है भट्टियों के दरवाजे बंद हैं। मजदूर जरा सांस ले रहे हैं। एक या दो उनके पीछे कोयला एकत्रित कर रहे हैं। अन्य अपने सब्बल पर झुके आराम कर रहे हैं। पैडी कहता है कि उनकी कमर टूट गई है और वह काम नहीं कर सकता। यांग के अनुसार स्टोकर्स को अपने कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए, तब मेहनत करने पर भी व्यक्ति को थकान नहीं होगी। पैडी श्रम करके थक जाता है क्योंकि वह जहाज से संबंधित नहीं है, अन्यथा उसे जहाज के प्रति स्नेह की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। यांग अपने साथी स्टोकर्स को प्रेरणा देता है कि वे जहाज को अपने शिशु के रूप में देखें। अब यह श्रम एक आनंददायक खेल में बदल जाएगा। यांग कहता है कि शिशु भूखा है, इसे भोजन दो, किंतु इसका भोजन तो कोयला है। इसका पेट कोयले से भर दो, वे सभी एक साथ करें तो बेहतर है। जब इसका पेट भरा होगा यह तेज रफ्तार से दौड़ेगा। यांग की स्टोकर से कहता है कि वे इसे तेजी से धुआं छोड़ते और दौड़ाते देखकर आनंद प्राप्त करें। वह जहाज को एक नया नाम देता है और यह नाम है रफ्तार। कठोर श्रम के प्रति भी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर यांग इसे एक आनंददायक खेल में बदल देता है। पैडी अपनी परेशानी दोहराता है कि उसकी कमर टूट गई है। तभी सीटी बजती है। इस पर सभी मजदूर नाराज हो जाते हैं। यांग उनसे शांत रहने को कहता है क्योंकि वे जहाज को चलाने वाले हैं। जहाज के अन्य अधिकारी कायर हैं। स्टोकर्स को अपने काम में ध्यान लगाना चाहिए। यह कहकर यांग भट्टी का दरवाजा खोलता है। तभी दूसरे और चौथे इंजीनियर सीढ़ी से उतरते हैं। माइल्ड्रिड इनके बीच में है। वह कांप कर पीली पड़ जाती है। वह यांग के ठीक पीछे खड़ी होती है। यह सब एक क्षण में मजदूरों के पीठ पीछे हो जाता है तथा उन्हें इसकी भनक भी नहीं लगती। यांग मजदूरों को मन लगाकर काम करने की प्रेरणा देता है। वह कोयला लेने को पीछे मुड़ता है। तभी सीटी पुनः सुनाई देती है। यांग गुस्से से भर जाता है। अन्य मजदूर पीछे मुड़कर देखते हैं। माइल्ड्रिड को वहां देखकर वे चकित हैं। यांग पूरा नहीं घूमता अतः माइल्ड्रिड को नहीं देख पाता। वह सीटी बजाने वाले को देखने का प्रयास करता है। वह एक हाथ में सब्बल इस तरह लहराता है कि किसी की हत्या कर देगा। वह वनमानुष की तरह अपनी छाती पीट कर चिल्लाता है। यांग अपने को अत्यधिक अपमानित महसूस करता है कि एक इंजीनियर सीटी बजाकर उसे लगनपूर्वक कार्य करने को कह रहा है, जैसे कि वह अपने कर्तव्य का पालन न करता हो। यांग में जो उच्चता की भावना है उसे ठेस लगती है। यांग इतनी लगन से कार्य कर रहा था कि उसे पता नहीं चला कि इंजीनियर माइल्ड्रेड के साथ आकर उसके पीछे खड़े हो गए हैं। वह इंजीनियर की हत्या करने की धमकी देता है। इंजीनियर के सीटी बजाने ने उसे क्रोध दिला दिया है। वह इतना अधिक गुस्से में है कि इंजीनियर को अनेक प्रकार की हिंसात्मक धमकियां देता है। अचानक उसे आभास होता है कि पीछे मुड़े मजदूर किसी और की भी तरफ देख रहे हैं। वह रक्षात्मक तरीके से घूमता है, मुंह से भयानक हुंकार निकालता है कि उसे एकदम सफेद पोशाक में माइल्ड्रेड दिखाई देती है। वह उसकी पथराई आंखों में देखता है। वह यांग की बातें सुनकर बुरी तरह भयभीत हो गई है। उसे लगता है कि यांग मनुष्य नहीं वन मानुष है। हल्की सी चीख के साथ वह हाथों से अपनी आंखें बंद कर लेती है ताकि वह भयानक चेहरा पुनः दिखाई न दे। यह प्रतिक्रिया देख यांग अचंभित होता है। उसका मुंह खुला रह जाता है और आंखें भ्रमित दिखाई देती है। माइल्ड्रेड मूर्छित सी होती प्रतीत होती है। दोनों इंजीनियर उसकी एक एक बाह पकड़ लेते हैं और वह कहती है कि उसे वहां से ले जाया जाए। वह एक भयानक जानवर है, यह कहकर वह बेहोश हो जाती है। उसे ले जाया जाता है। यांग अपमानित महसूस करता है। सत्यानाश हो, यह कहकर वह सब्बल फेंक कर मारता है जो दरवाजे से टकराता है। दृश्य चार। इस दृश्य में यांग पर माइल्ड्रेड से मुलाकात का जो प्रभाव पड़ता है वह दिखाया गया है। यह फायरमैन का भित्री कक्ष है। यांग की ड्यूटी अभी समाप्त हुई है तथा भोजन का समय है। सभी स्टोकर्स के शरीर साबुन पानी से तर हैं। कोयले की राख आंखों के पास अभी भी चिपकी है तथा विचित्र भाव उत्पन्न कर रही है। यांग ने न तो चेहरा धोया है न ही स्नान किया है। वह सभी से अलग खड़ा है। वह एक बेंच पर उसी मुद्रा में बैठा है जिसमें रोडिन ने विचारक को एक मूर्ति में प्रस्तुत किया है। अन्य अधिकतर स्टोकर सिगार पी रहे हैं। वे यांग की ओर देख रहे हैं। यांग के व्यवहार में आए परिवर्तन को आवाजें उजागर करती हैं। आवाजें, उसने कुछ नहीं खाया है, कोई उसे कुछ तो खिला दो, यह झूठ मत बोलो, यांग तो आग खाता है, हा हा, उसने तो अभी नहाया भी नहीं है, वह भूल गया है, वह स्नान करना भूल गया है। यांग उत्तर देता है कि वह कुछ भी नहीं भूला है। वह नहाने को बुरा बताता है, उसकी इस कार्य में कोई रुचि नहीं है, किंतु उसके साथी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते। वह विभिन्न प्रकार से बार बार यह कहकर उकसाते हैं कि उसने स्नान नहीं किया है। आवाजें, यह स्थायी रूप से चिपक जाएगी, यह तुम्हारी खाल के अंदर समा जाएगी, इससे तो भयानक खुजली उत्पन्न होगी, जगह जगह तेंदुओं की खाल जैसे चकते बन जाएंगे, तुम एक भद्दे हफ्सी दिखाई दोगे। यांग, अच्छा हो कि तुम स्नान कर लो, तुम्हें अच्छी नींद आएगी, यांग स्नान कर लो। यांग दावा करता है कि वह सोच रहा है, अतः व्यर्थ के कार्यों के लिए उसके पास समय नहीं है। सभी स्टोकर्स जानते हैं कि यांग सामान्य नहीं है। स्टोक होल में माइल्ड्रेड के आने का तथा यांग को देखकर कटु टिप्पणी करने का यांग पर गहरा प्रभाव पड़ा है। वह गहन चिंतन में है। लोंग तथा पैडी इस घटना की अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं। पैडी तीखी शैली में दावा करता है कि माइल्ड्रेड तो पहली ही नज़र में यांग से प्रेम करने लगी थी। यांग को देखकर उसका चेहरा इस प्रकार पीला पड़ गया था तथा उसने अपने हाथों से आंखें ढक ली थी, जैसे वो किसी भयानक दृश्य को देखने से बचना चाह रही थी। उसके व्यवहार से प्रकट हो रहा था कि वह बहुत डर गई थी, मानो कि उसे चिड़ियाघर के पिंजड़े से बाहर निकला वन मानुष दिखाई दे रहा हो। इस प्रकार पैडी यांग पर कटाक्ष करता है कि जो अपने बलिष्ठ शरीर पर बहुत घमंड करता था। पैडी यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि यांग का शरीर पैडी के शरीर से अधिक श्रेष्ठ नहीं है, या तो निम्न है, क्योंकि इसकी भयानकता ने एक युवती को भयभीत कर दिया। यदि यांग व्यक्तित्व से वास्तव में युवा एवं आकर्षक होता तो वह युवती पहली ही नज़र में उसकी दीवानी हो जाती। लोंग के अनुसार माइल्ड्रेड का वहां आना एक विशेष उद्देश्य द्वारा प्रेरित था। उसका पिता एक बड़ा पूंजीपति है। विश्व में बनने वाली आधी स्टील तो वह ही बनाता है। वह उस जहाज का मालिक है जिस पर वे नौकरी कर रहे हैं। इस प्रकार वे सभी उसके निम्न स्तर के गुलाम हैं। उसकी पुत्री होने के कारण माइल्ड्रेड ने जहाज का निरीक्षण किया तथा स्टोक होल में वह देखने आई कि उसके गुलाम वहां किस प्रकार कार्य करते हैं। उसके लिए ये गुलाम उन जानवरों के समान है जिन्हें देखकर रोमांटिक स्वभाव के बच्चे और स्त्रियां आनंद प्राप्त करते हैं। वास्तव में लोंग का इरादा यांग के उस भ्रम को तोड़ना है कि वे जहाज के अविभाज्य अंग हैं। उसके कहने का तात्पर्य है कि यह जहाज मिस्टर डगलस की निजी संपत्ति है, जिस पर यांग मात्र एक नौकर है। मालिकों की निगाह में उसका कोई महत्व नहीं है, वे तो उसे मनुष्य के स्थान पर मात्र एक जानवर समझते हैं। यहाँ लोंग को अवसर प्राप्त हो जाता है कि वह वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को प्रतिपादित कर दे, जो इस विचार पर आधारित है कि मजदूरों के सभी कष्टों के लिए केवल पूंजीपति जिम्मेदार हैं। यांग घोषणा करता है कि वह माइल्ड्रिड की हत्या कर देगा। लोंग उसे सलाह देता है कि वह अपराधी बनने का प्रयास ना करे, किंतु यांग यह भूलने को तैयार नहीं है कि माइल्ड्रिड ने उसे एक वन मानुष समझा था। यांग को यह जानकर गहरा आघात लगता है कि माइल्ड्रिड ने उसे एक वन मानुष समझा था। वह घोषणा करता है कि वह माइल्ड्रिड को दिखा देगा कि वह माइल्ड्रिड से अधिक श्रेष्ठ है, वह जहाज का हिस्सा है, जबकि माइल्ड्रिड तो इस पर मात्र निरर्थक बोझ है। यह यांग की ताकत है, उसका श्रम है, जो जहाज को 25 नोट प्रति घंटे की चाल से चलाता है, जबकि माइल्ड्रिड तो मात्र एक यात्री है, जहाज के चलने में उसका कोई योगदान नहीं है। यह अपने आप में इसका सबूत है कि यांग उससे अधिक श्रेष्ठ है। उसने माइल्ड्रिड से बदला लेने का संकल्प कर लिया है। इसी भावना से वह दरवाजे की ओर भागता है। सभी डरते हैं कि कोई हिंसक घटना न हो जाए। आवाजें, उसे रोको, वह हत्या कर देगा, वह उसकी जान ले लेगा, उसे पकड़ो, रोको, वह पागल हो गया है, वह बहुत ताकतवर है, उसे तो पकड़कर नीचे गिरा दो, ध्यान रखना कहीं वो लात न मार दे, उसकी बाहें बांध दो। वे सभी उस पर टूट पड़ते हैं। पैडी कहता है कि तब तक न छोड़ो जब तक दिमाग ठंडा ना हो जाए। वह टिप्पणी करता है कि यांग ऐसी लड़की को मारना चाहता है जिसमें जान है ही नहीं, किंतु यांग यह सिद्ध करना चाहता है कि वनमानुष कौन है। दृश्य 5। 3 सप्ताह बाद का दृश्य है। रविवार है, सुहावना मौसम है। प्रातःकाल 5th Avenue पर दो दुकानों की शो विंडो दिखाई दे रही है। एक कोने में आभूषण की दुकान है, जिसके बराबर में एक जानवरों की खाल की बनी वस्तुओं की दुकान है। यहाँ संपन्नता का पूर्ण दिखावा हो रहा है। आभूषण की दुकान में कीमती पत्थर और आभूषण है, सभी पर कीमत दर्शाने वाली चिट लगी है। जानवरों की खाल वाली दुकान में भी ऐसा ही है। एक तरफ से यांग और लोंग आते हैं। लोंग ने नाविकों वाले कपड़े पहने हुए हैं, यांग उन्हीं गंदे कपड़ों में है जो उसने स्टोकहोल में पहने हुए थे। उसके सिर पर फायरमैन वाला टोप लगा है, उसने कई दिनों से दाढ़ी नहीं बनाई है। यहाँ की संपन्नता देखकर वे ठिठकते हैं। यांग को यह जानकर भारी धक्का लगा है कि माइल्ड्रिड ने उसे एक वनमानुष समझा। अब वह लोंग के सिद्धांत में विश्वास करने लगा है कि गरीब मजदूरों के सभी कष्टों के लिए पूंजीपति ही जिम्मेदार हैं। यांग माइल्ड्रिड से बदला लेने का निर्णय लेता है। उस उद्देश्य के लिए लोंग उसे 5th Avenue लेकर आता है। यांग सोचता है कि वह माइल्ड्रिड मिलेगी। लोंग यांग को बताता है कि वह यांग को वहां यह दिखाने को लाया है कि ये पूंजीपति किस प्रकार विलासी जीवन व्यतीत करते हैं। वास्तव में यह यांग एवं माइल्ड्रिड के बीच का कोई निजी मामला नहीं है, यह तो कहीं ज्यादा ऊंची समस्या है। यह तो श्रम एवं पूंजी के मध्य चलने वाली एक शाश्वत संघर्ष है। यांग गरीब मजदूरों का प्रतिनिधि है तथा माइल्ड्रिड अथवा उसका पिता डगलस पूंजीपतियों के प्रतिनिधि हैं। लोंग का इरादा यांग में वर्ग संघर्ष की चेतना उत्पन्न करना है। इस संघर्ष में सभी मजदूर उसके समर्थन में उसी प्रकार हैं जैसे कि सभी पूंजीपति डगलस के समर्थक हैं। ये दो व्यक्तियों के मध्य लड़ाई नहीं है, वरन दो वर्गों के मध्य युद्ध है। लोंग यांग को बताता है कि इस समय लोग चर्च में गए हुए हैं, वे दोनों उनके लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। इस बीच में वे आभूषण की दुकान पर पहुँचते हैं। यांग को वहाँ की वस्तुओं की ऊंची कीमत देखकर आश्चर्य होता है कि उसने यह कभी न सोचा था कि लोगों के पास इतना धन हो सकता है। एक वस्तु की कीमत इतनी है कि एक भूखे परिवार का पेट भरा जा सकता है। जब वह खाल की दुकान पर जाता है, वह देखता है कि एक बंदर की खाल 2000 बक्स में बिक रही है। यह देख उसे क्रोध आता है और बदला लेने की इच्छा बलवती हो जाती है। लोंग विचारशील और यांग उन्मादी है। लोंग यांग को बुद्धिमानी से कार्य करने की सलाह देता है, अन्यथा वे दोनों पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जा सकते हैं। इस प्रकार उनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उसे सभी कुछ सहज रूप से अपने क्रोध पर नियंत्रण रखकर करना चाहिए। हिंसक शक्ति सफल नहीं होती, बुद्धि उसे पराजित कर देती है। बुद्धिमानी इसमें है कि वह अपने मांगों को प्रकाश में लाकर उनके लिए अधिक से अधिक समर्थन प्राप्त किया जाए। यह एक शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीका है। दिन और दिन प्रजातांत्रिक तरीकों से मजदूरी वर्ग मजबूती पा रहा है। चुनाव में अधिक से अधिक सीट जिताकर वास्तविक ताकत प्राप्त की जा सकती है, किंतु यांग उसे कायर कहता है और चले जाने को कहता है। यांग अकेला रह जाता है। दाईं ओर से चर्च की भीड़ आती है। यांग उन लोगों की ओर घृणा से देखता है, किंतु वे उसकी ओर ध्यान नहीं देते। इससे यांग क्रोधित होता है। क्रोध प्रदर्शित करने को यांग एक स्त्री की ओर जाता है और उसका उपहास करता है, किंतु उसे महिला से केवल उपेक्षा मिलती है। एक महिला की ओर देखते हुए यांग अपना क्षोभ प्रकट करता है। वह संकेत करता है कि उस महिला का चेहरा आकर्षक नहीं लग रहा। यह तो देखने वाले को डरा सकता है। वह उस महिला को सुझाव देता है कि वह किसी अन्य को प्रभावित अथवा आकर्षित करने का प्रयास करे। वह टिप्पणी करता है कि वह महिला उस धूर्त यात्री के समान है जो जहाज में यात्रा करता है, किंतु यात्रा का शुल्क नहीं देना चाहता। उसका चेहरा भारी मेकअप से ढका है, निरा रंग रोगन और पाउडर लगा है। उसने तो अपने को इस प्रकार सजा रखा है कि मानो मरने वाली हो। उस महिला का अपमान करके यांग इस प्रकार प्रसन्न होता है मानो कि वह महिला माइल्ड्रिड हो। अप्रत्यक्ष रूप से वह यह सिद्ध करना चाहता है कि ये महिलाएं भी लंगूर जैसी दिखती हैं। यांग का अनियंत्रित व्यवहार उसे एक झगड़े में उलझा देता है। पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। दृश्य 6। यह अगले दिन की रात है। यह ब्लेक वेल्स टापू पर बने कारागार की कैदी कोठरियों की पंक्ति है जो पीछे तक चली जाती है। बरामदे की नीची छत पर एक बल्ब लटक रहा है। उसी की रोशनी इन कोठरियों में जा रही है। यांग के एक चारपाई के कोने में बैठा एक कोठरी में दिखाई देता है। उसकी मुद्रा वैसी ही है जैसी कि रोडिन की विचारक की मूर्ति में। उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं। सिर पर जो पट्टी बंधी है उस पर भी खून के धब्बे हैं। यांग जागता है और सलाखों को हिलाता है। वह अपनी कोठरी चिड़ियाघर का पिंजड़ा बताता है। हंसी की आवाजें सुनाई देती है, यद्यपि दिखाई कोई नहीं देता। आवाजें, उपहास करते हुए, चिड़ियाघर, यह तो कारागार की कोठरी का नया नाम है। वैसे नाम अच्छा है, स्टील। तुमने क्या कहा, यह तो लोहे का पुराना घर है। कौन मूर्ख बोल रहा है, वही है जिसका सिर पुलिस वालों ने फोड़ दिया है। यांग महसूस करता है कि वह पूर्ण चेतना में नहीं है अथवा वह स्वप्न देख रहा है। वह चिड़ियाघर में है, किंतु आश्चर्य है कि लंगूर भी बातें कर रहे हैं। आवाजें, उपहासपूर्ण हंसी के साथ, तुम वास्तव में एक पिंजड़े में हो, एक जेल की कोठरी, एक पशुओं का बाड़ा, एक सुअरों के रहने का बाड़ा, एक कुत्ते का घर। बच्चे बताओ, तुम कौन हो? झूठ बोलने की चिंता मत करो, तुम कौन हो? उनकी रुचि यांग की कहानी जानने में है। यांग बताता है कि किस प्रकार वह एक जहाज पर फायरमैन था, किंतु अब उसे एक युवती से बदला लेना है। वे सोचते हैं कि कोई प्रेम प्रसंग का मामला है, किंतु यांग उन्हें स्पष्ट कर देता है कि वह एक अलग प्रकार की लड़की थी जो स्टॉकहोल्म में आई थी, यद्यपि कि वह उसका वहां से कोई रास्ता नहीं था। यांग में व उसमें कोई समानता न थी। यांग तो जहाज को 25 नॉट प्रति घंटा की रफ्तार से चलाता है, जबकि वह युवती तो किसी दुकान में रखने योग्य गुड़िया जैसी थी। वह स्पष्ट करता है कि उसमें और युवती में कितना अंतर है। वह एक गरीब मजदूर है, जबकि वह युवती पूंजीपति वर्ग की है। वह बताता है कि वह युवती एक सेठ डगलस की पुत्री है। आवाज यांग को सलाह देती है कि उसे IWW अथवा बॉबलिस का सदस्य बन जाना चाहिए। आवाजें, घृणापूर्वक, हुर्रा, 4 जुलाई को मिली थी स्वाधीनता, जरा टोप तो देना, स्वतंत्रता, न्याय, सम्मान, अवसर, भाईचारा। एक समय था जब यांग अपनी पहचान स्टील के साथ बनाए हुए था, किंतु जिस क्षण उसे समझ में आ जाता है कि उसे उस वर्ग से संघर्ष करना है जिसका प्रतिनिधि डगलस है, वह स्टील से घृणा करने लगता है, क्योंकि डगलस स्टील का निर्माता है। उसका विश्वास है कि जिस लोहे के पिंजड़े में उसे कैद किया गया उसका लोहा डगलस ने ही तैयार किया होगा। यहाँ की तो सभी वस्तुएं लोहे की बनी है, चाहे पिंजड़ा हो, कोठरी हो, ताले हो, वोल्ट हो या सलाखे। यह उसके विरुद्ध डगलस का षड्यंत्र है, ऐसा वह सोचता है। अब वह अपने आप को अग्नि से जोड़ना चाहता है जो लोहे और स्वात को पिघला देती है। वह स्टील की बनी सभी चीजें नष्ट करना चाहता है। यांक लोहे की बनी सभी वस्तुओं को तोड़ने का निर्णय लेता है। उससे अपने पिंजड़े की सलाखों को मोड़ने में सफलता मिल जाती है। यह देख रक्षक आश्चर्य से कहता है कि एक मनुष्य वह कार्य नहीं कर सकता। यांक उत्तर देता है कि एक हेयरी एप यह कर सकता है। वह रक्षक पर कायरता का आरोप लगाता है। वह घोषणा करता है कि वह बाहर आ रहा है और उसे कोई रोक नहीं सकता। इस प्रकार उसकी शक्ति, जो जहाज के स्टॉकहोल में उपयोगी थी, अब व्यर्थ के गैरकानूनी कार्यों में नष्ट हो रही है। इसका कारण माइल्ड्रिड का बचपने में किया बस वह छोटा सा कार्य है। लोहे की सलाखें मुड़ी हुई देखकर रक्षक को धक्का लगता है। वह कहता है कि एक मनुष्य में इतनी ताकत नहीं हो सकती। यह सुनकर यांक टिप्पणी करता है, किंतु इतनी ताकत एक वनमानुष में हो सकती है। दृश्य 7। लगभग एक माह पश्चात समुद्र के किनारे स्थानीय कार्यालय IWW के कमरे के अंदर एक कार्यालय के अनुरूप कोने में एक डेस्क और एक ऊंचा स्टूल है। कागजों से भरी एक मेज कमरे के बीच में है। इसके पास कुर्सियां पड़ी हैं। कार्यालय सचिव स्टूल पर बैठा हुआ लेजर में आय व्यय का ब्यौरा लिख रहा है। मजदूर जैसे दिखने वाले 8-10 लोग मेज के पास समूह बनाकर बैठे हैं। 2 शतरंज खेल रहे हैं, एक पत्र लिख रहा है। उनमें से अधिकतम सिगार पी रहे हैं। दीवार पर एक बड़ा साइन बोर्ड लटका है, विश्व के औद्योगिक मजदूर स्थानीय संख्या 57। यांग गली में आता है। वह उसी प्रकार की पोशाक में है जैसी उसने दृश्य 5 में पहनी हुई थी। वह सावधानीपूर्वक रहस्यमयी ढंग से चल रहा है। वह कार्यालय के दरवाजे पर आता है, पंजों के बल उचक कर कुछ सुनने का प्रयास करता है। अंदर की खामोशी उसे प्रभावित करती है। सावधानीपूर्वक वह दरवाजा खटखटाता है। कोई उत्तर नहीं आता तो जोर जोर से खटखटाता है। विश्व औद्योगिक मजदूर संगठन का सचिव उसे अंदर आने को कहता है। यांक अपना परिचय देता है और संगठन में सम्मिलित होने की इच्छा करता है। सचिव को यह जानकर प्रसन्नता होती है कि इस व्यवसाय के लोग भी IWW के सदस्य बनना चाहते हैं। $50 शुल्क लेकर वह यांक अर्थात रॉबर्ट स्मिथ का सदस्यता कार्ड बना देता है। वह यांक से कहता है कि वह मेज पर रखा साहित्य पढ़े और कुछ साथियों में वितरित करने को ले जाए, किंतु वितरण सावधानी से करे कि उसकी नौकरी के लिए कोई खतरा उत्पन्न न हो। यांक कहता है कि वह सभी कुछ नष्ट कर देना चाहता है। सचिव पूछता है कि असमान कानूनों को बदलने के लिए वह शांतिपूर्ण वैधानिक प्रयास करना चाहता है या बारूद से विस्फोट करना चाहता है। IWW की सदस्यता ग्रहण करके यांक सचिव से कहता है कि वह उसकी सहायता से स्टील के सभी कारखाने नष्ट करना चाहता है। सचिव उसको सभी कारखानों के पते दे दे और विस्फोट करने की सामग्री उपलब्ध करा दे। से सारा कार्य तो यांक अपने आप कर लेगा। वह अपना उद्देश्य विस्तार से बताता है कि वह स्टील का अस्तित्व नष्ट करना चाहता है, चाहे वह स्टील किसी रूप में हो। वह संसार भर के सभी पिंजड़े, कारखाने, जहाज, इमारत, कारागार और संपूर्ण स्टील ट्रस्ट नष्ट कर देगा। यांक कहता है कि वह स्टील ट्रस्ट के प्रेसिडेंट को मार देगा। सचिव संकेत करता है तथा यांक को उठाकर कार्यालय के बाहर फेंक दिया जाता है। यांक कहता है कि इन लोगों की रुचि वास्तविक सुधार करने में नहीं है। ये ठोस कार्य नहीं करना चाहते। वे सोचते हैं कि मजदूर बस इस बात से खुश हो जाएगा कि उसकी कार्य अवधि कुछ कम कर दी गई है अथवा मजदूरी कुछ बढ़ा दी गई है। यह गलत है। तभी एक सिपाही आकर यांक से वहां से चलने को कहता है, अन्यथा वह यांक को गिरफ्तार कर लेगा। दृश्य 8। अगले दिन शाम का धुधलका है। चिड़ियाघर का यह बंदर विभाग है। एक पिंजड़े पर प्रकाश केंद्रित है जिससे कि पिंजड़े के अंदर का भी हाल दिखाई दे रहा है। दूसरे पिंजड़ों से बंदरों का शोर सुनाई दे रहा है। उस विशेष पिंजड़े पर वनमानुष की पट्टिका लगी हुई है। वह विशालकाय जंतु पिंजड़े में बैठा दिखाई दे रहा है। उसकी वह मुद्रा है जो रोडिन की मूर्ति विचारक की है। यांक दाईं ओर प्रवेश करता है। तुरंत चीखने चिल्लाने का शोर बढ़ जाता है। वनमानुष आंख उठाकर देखता है किंतु बोलता कुछ भी नहीं। यांक वनमानुष से मिलने यहाँ आया है। वह वनमानुष को अपना भाई मानता है और उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करता है। यांक को मानव समाज में कहीं पर भी स्वीकार नहीं किया जाता है। प्रारंभ में वह वनमानुष संबोधन को अपने लिए प्रयुक्त एक गाली समझता है, किंतु अब उसे इसमें गर्व महसूस होता है। वह चिड़ियाघर में बंदर विभाग में जाता है। वह बनमानुष के पिंजड़े के पास पहुंचता है और उसे अपना भाई मानता है। यांग पिंजड़ा खोल देता है तथा बनमानुष से कहता है कि वह बाहर आकर उससे हाथ मिलाए। यांग प्रस्ताव करता है कि वह बनमानुष उसके साथ घूमता हुआ फिफ्थ एवेन्यू चले। उसे आशा है कि वहां मौजूद सभी वस्तुओं को नष्ट करने में बनमानुष उसकी सहायता करेगा। यांग जानता है कि वहां की सभी वस्तुएं पूंजीपतियों से संबंधित हैं। इस प्रकार बनमानुष की सहायता से वह बदला लेने में सफल हो जाएगा। वह वनमानुष भी यांग को निराश करता है। वह यांग को इतनी कसकर बाहों में भींच लेता है कि यांग की पसलियां चटक जाती हैं तथा उसके मुख से चीख निकल जाती है। वनमानुष यांग को पिंजड़े में फेंक अंधेरे में चला जाता है। यांग को महसूस होता है कि वनमानुष ने उसे कुश्ती के चैंपियन जिप्सको की ताकत से भींचा था। उसे वनमानुष के हिंसात्मक व्यवहार से कोई शिकायत नहीं है। उसका दिल इस विचार से टूट गया है कि वनमानुष ने भी उसे अपना नहीं समझा, उसे अपना भाई नहीं माना। इससे स्पष्ट होता है यांग का उससे भी संबंध नहीं है। यांग सभी स्त्री पुरुषों को संबोधित करता है कि वे उसके निकट आएं, क्योंकि वह एक साधारण प्राणी नहीं है। वह संसार का अकेला एकमात्र अपनी ही तरह का प्राणी है, क्योंकि कोई उससे संबंधित है वह किसी से भी संबंधित है। ना तो वह मनुष्यों में से है और ना ही वनमानुषों में से। वह मर रहा है, अतः वह लोगों से कहता है कि वह इस अवसर को हाथ से ना जाने दें, क्योंकि इसके बाद तो वह केवल उसके बारे में सुनेंगे किंतु उसे देख ना पाएंगे। यह भारी विडंबना है कि इन परिस्थितियों में भी वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। वह भी इस आधार पर कि वह किसी अज्ञात जंगल से लाया गया अकेला और एकमात्र मौलिक वनमानुष है। उसे पूर्ण विश्वास है कि लोग उसे देखने में रुचि लेंगे, क्योंकि वह एक विचित्र प्राणी है। समाप्त।